एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथ सार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ग्रंथ सार में आपका स्वागत है। आज हम रुमान आलम के एक बहुत ही चर्चित उपन्यास लीव द वर्ल्ड बिहाइंड पर बात करेंगे।
जी, ये एक ऐसी किताब है जो आपको सोचने पे मजबूर कर देती है, थोड़ी बेचैन भी।
हाँ बिल्कुल। कहानी एक परिवार की छुट्टी से शुरू होती है, पर वो छुट्टी बहुत जल्दी किसी अनजाने डर में बदल जाती है।
सही, तो हम आज इसकी कहानी देखेंगे, किरदारों के अंदर क्या चल रहा है वो समझेंगे।
और वो बड़े सवाल जो ये किताब उठाती है ना।
हाँ बिल्कुल।
तो लेखक है रुमान आलम, बांग्लादेशी अमेरिकी मूल के, और उनका लिखने का अंदाज काफी खास है।
जी, वो अक्सर क्लास, रेस और मॉडर्न दुनिया की जो चिंताएं हैं उन पर लिखते हैं बहुत सधे हुए तरीके से।
लीव द वर्ल्ड बिहाइंड उनका तीसरा उपन्यास था जो 2020 में आया।
हाँ, और वो वक्त भी बड़ा अजीब था, याद है, महामारी, सोशल टेंशन।
बिल्कुल, शायद इसीलिए ये किताब इतनी रेलेवेंट लगी लोगों को। इसे नेशनल बुक अवार्ड फाइनलिस्ट भी चुना गया था।
हाँ, और ओबामा की रीडिंग लिस्ट में भी थी है।
हाँ, तो चलिए आज खोलते हैं इस उपन्यास की परतें और देखते हैं कि इसमें ऐसा क्या खास है।
बिल्कुल, तो कहानी शुरू होती है अमांडा और क्ले से।
हाँ, एक वाइट मिडिल क्लास कपल
जी,
ब्रुकलिन में रहते हैं।
जी,
अपने दो बच्चों आर्ची और रोज के साथ वो लॉन्ग आइलैंड में एक आलीशान आइसोलेटेड घर किराए पर लेते हैं छुट्टी के लिए,
मकसद
शहर की भागदौड़ से दूर, बस आराम।
करेक्ट।
पहला दिन तो बिल्कुल वैसा ही जाता है जैसा सोचा था, पूल, अच्छा खाना, शांति, जैसे एक परफेक्ट बबल में हो।
हाँ, वो परफेक्ट बबल, यहीं से कहानी पकड़ती है रफ्तार, है ना? ये आराम, ये सिक्योरिटी का एहसास,
कितनी जल्दी टूटता है।
ये बस तूफान से पहले की शांति है।
बिल्कुल। और फिर उसी रात देर से दरवाजे पर दस्तक होती है।
हाँ,
और बाहर कौन? एक उम्र दराज ब्लैक कपल,
जी,
जीएच और रूथ वॉशिंगटन।
वो कहते हैं कि ये उन्हीं का घर है। जी, और शहर में कोई बड़ा ब्लैकआउट हुआ है इसलिए उन्हें वापस आना पड़ा है।
सोचिए, आधी रात को आपके किराए के घर पर मालिक आ जाए, तनाव तो।
जाहिर है, अमांडा जो थोड़ी कंट्रोल फ्रीक है वो तो तुरंत शक करने लगती है।
उसके मन में जो दबे हुए प्रेजुडिसेस हैं नस्ल को लेकर, क्लास को लेकर, वो शायद बाहर आने लगते हैं।
बिल्कुल, जबकि क्ले जो प्रोफेसर है वो थोड़ा पैसिव है, वो सिचुएशन को शांत करने की कोशिश करता है।
और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, बाहर की दुनिया से कोई कांटेक्ट नहीं।
हाँ, ना इंटरनेट, ना टीवी, ना फोन, कुछ नहीं। तो जॉर्ज और रूथ सच बोल रहे हैं या नहीं ये वेरीफाई करने का कोई तरीका ही नहीं है।
दोनों परिवार एक ही छत के नीचे फंस गए। अजीब सी सिचुएशन, शक भी है, अनिश्चितता भी।
जी, और पावर डायनामिक्स भी बदल जाते हैं। घर के मालिक अब मेहमान जैसे हैं, किराएदार थोड़े इंचार्ज जैसे पर डरे हुए।
किरदारों को थोड़ा और समझ लेते हैं। अमांडा,
अमांडा कामकाजी है, ऑर्गेनाइज्ड है, पर अंदर से इनसिक्योर और थोड़ी प्रेजुडिस्ड।
क्ले,
क्ले लिबरल है, पढ़ा लिखा, पर एक्शन लेने से कतराता है, कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करता है।
जीएच
अमीर है, फाइनेंस में काम करता है, दुनिया देखी है उसने, बाहर से शांत पर अंदर शायद वो भी उतना ही परेशान।
और रूथ,
रूथ जीएच की पत्नी, वो ज्यादा डायरेक्ट है, अपने घर को लेकर प्रोटेक्टिव, और अमांडा के शक को शायद वो महसूस कर लेती है।
और बच्चे आची और वोज,
वो तो शुरुआत में अपनी ही दुनिया में है, टीनेजर्स हैं, बाहर क्या चल रहा है उससे अनजान।
तो ये अजीब सी शांति थी शुरू में, लेकिन फिर चीजें बिगड़ने लगती।
हाँ, सबसे पहले वो भयानक आवाज, द नॉइज।
कैसी आवाज थी वो?
कुछ अननेचुरल, कान फाड़ देने वाली, जैसे कोई बहुत बड़ी अनजानी मशीन हो, इतनी तेज कि खिड़कियां तक हिल जाती हैं।
ये पहला पक्का सबूत था कि बाहर कुछ बहुत बहुत बुरा हो रहा है।
जी, और ये अकेला नहीं था, इसके बाद प्रकृति भी अजीब बर्ताव करने लगती है।
हाँ, वो हिरण वाली बात,
सैकड़ों हिरण घर के पास आकर जमा हो जाते हैं, बिल्कुल चुपचाप, इंसानों से डरते भी नहीं, बस देखते रहते हैं।
डरावना है ये।
हाँ, और फिर वो फ्लमिंगो।
हाँ,
लॉन्ग आइलैंड के पूल में गुलाबी फ्लमिंगो, ये तो बिल्कुल ही नामुमकिन सी बात है।
ऐसा लगता है जैसे नेचर के नियम ही बदल रहे हो।
बिल्कुल, और इन सब का असर किरदारों पर दिखने लगता है। वो आलीशान घर,
वो अब जेल जैसा लगने लगता है।
हाँ, कांच की बड़ी बड़ी खिड़कियां अब उन्हें सेफ नहीं बल्कि एक्सपोज महसूस कराती हैं।
टेक्नोलॉजी बेकार हो चुकी है।
अब वो एक दूसरे पे निर्भर है, पर भरोसा करना भी मुश्किल है, डर, शक, वो हवा में है।
पर क्या ये बाहरी खतरा ही सबसे बड़ा था, या ये खतरा उनके अंदर के डर को बाहर ला रहा था?
यह बहुत जरूरी सवाल है। क्योंकि असली संकट तब और गहराता है जब वो घर के अंदर आता है।
आर्ची की बीमारी?
हाँ, उनका बेटा आर्ची बीमार पड़ जाता है। तेज बुखार, उल्टियां और फिर
उसके दांत?
हाँ, उसके दांत गिरने लगते हैं बिना किसी दर्द के, एक एक करके।
हे भगवान, ये तो हॉरर फिल्म जैसा है।
सोचिए उन माँ बाप की हालत, कोई डॉक्टर नहीं, कोई मदद नहीं, कोई जानकारी नहीं, पूरी तरह लाचार।
ये लाचारी हमें क्ले में भी दिखती है ना, जब वो मदद के लिए बाहर जाता है।
अरे हाँ, वो कार लेकर निकलता है शहर की तरफ, पर बिना GPS के
खो जाता है
बुरी तरह, और रास्ते में उसे घबराई हुई औरत मिलती है, स्पेनिश बोल रही होती है, शायद मदद मांग रही थी।
और क्ले क्या करता है?
क्ले घबरा जाता है, उसे समझ नहीं आता क्या करे, और वो उसे वहीं छोड़कर वापस आ जाता है।
ये सिर्फ रास्ता भटकना नहीं था।
नहीं, ये उसकी मॉरल फेलियर थी, उसकी इनएक्शन, उसकी सारी पढ़ाई लिखाई, उदारवादी सोच उस वक्त किसी काम नहीं आई।
और फिर हालात और बिगड़ते हैं।
हाँ, हजारों हिरणों का झुंड, एक साइलेंट माइग्रेशन, जैसे प्रकृति खुद भाग रही हो किसी चीज से।
मदद की सारी उम्मीदें खत्म।
जी, जब GH अपने पड़ोसी डैनी के पास जाता है, डैनी एक सर्वाइवलिस्ट टाइप का आदमी है, सब है, पर वो मदद करने से साफ इनकार कर देता है, शक करता है, कहता है किसी बाहरी को अंदर नहीं आने देगा।
मतलब कंप्लीट आइसोलेशन, अब वो बिल्कुल अकेले हैं, कोई मदद नहीं आएगी।
बिल्कुल,
इस बढ़ते खतरे के बीच किरदारों के अंदर भी बदलाव आ रहे होंगे।
हाँ बिल्कुल, अमांडा जिसका कंट्रोल जा चुका है, उसे अपनी कमजोरियों, अपने पूर्वाग्रहों का सामना करना पड़ता है। रूथ के प्रति जो उसका शक था,
हाँ,
शायद एक माँ होने का डर उसे थोड़ा नरम बनाता है।
और क्ले?
क्ले को अपनी बेबसी समझ आती है, अपनी नैतिक कमजोरी का एहसास होता है।
रूथ का क्या, वो तो शुरू में काफी सख्त थी।
हाँ, पर धीरे धीरे वो अमांडा के साथ एक एक अजीब सा बॉन्ड बनाती है, शायद डर और बच्चों की चिंताओं ने जोड़ती है। रूथ ज्यादा प्रैक्टिकल भी है।
और GH, उसका पैसा, उसका स्टेटस,
सब बेकार। उसे समझ आता है कि वो सब कितना बेमानी है, वो भी अब बस डरा हुआ एक इंसान है।
आर्ची तो जैसे डर का सिंबल बन गया है।
हाँ, और रोज सबसे छोटी, जो ज्यादातर चुप रहती है,
उसका वो फ्रेंड्स वाला ऑब्सेशन,
हाँ, वो जैसे उस पुरानी सेफ दुनिया में सुकून ढूंढ रही है जो अब खत्म हो चुकी है।
ये किताब कई बड़े थीम्स उठाती है, एक तो रेस और क्लास।
बिल्कुल,
कैसे क्राइसिस में हमारे अंदर के बायस सामने आ जाते हैं। अमांडा का कैरेक्टर इसका परफेक्ट उदाहरण है, वो लिबरल वाइट गिल्ट वाली बात।
हाँ, कहना आसान है कि हम बराबर हैं, पर
असल में डर और शक हावी हो जाते हैं।
और फिर प्रिविलेज का थीम, अमीरी, वो आलीशान घर, कैसे वो सुरक्षा का भ्रम देता है
जो एक झटके में टूट जाता है।
पैसा और स्टेटस असली खतरे में काम नहीं आते।
ये हमारी पूरी सिविलाइजेशन की कमजोरी दिखाता है। कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल, सब कितना नाजुक है।
हाँ, एक झटका और सब खत्म। और आज के जमाने में इन्फॉर्मेशन का क्या मतलब है, सच क्या है?
जब सब बंद हो जाए तो किस पर यकीन करे, अफवाहों पर?
ये उपन्यास इस पर भी सवाल उठाता है। पात्र भी तो आधी अधूरी जानकारी से जूझ रहे हैं, बिल्कुल हमारी तरह।
पेरेंटिंग का थीम भी बहुत स्ट्रांग है, बच्चों को बचाने की कोशिश, वो डर।
आर्ची की बीमारी उसे और इंटेंस बना देती है।
और आखिर में वो सवाल, मुश्किल वक्त में दूसरों से जुड़ना जरूरी है या खुद को अलग कर लेना,
भरोसा करें या पीछे हट जाएं, सहयोग करें या अकेले बचें, बड़े सवाल हैं ये।
कहानी कहने का तरीका भी काफी दिलचस्प है, वो थर्ड पर्सन ओमनिशिएंट नैरेटर।
हाँ, जो सब देख सकता है, हर किरदार के मन में झांक सकता है।
इससे हमें सबकी सोच, सबके डर का पता चलता है।
और हमें, पढ़ने वालों को, किरदारों से ज्यादा पता होता है, जिससे एक टेंशन बनी रहती है।
लेखक बाहरी एक्शन से ज्यादा किरदारों के इंटरनल रिएक्शन पर फोकस करते हैं, साइकोलॉजिकल रियलिज्म।
जी, डर का असली खेल तो मन में चल रहा है।
और वो जानबूझकर रखी गई एम्बिग्युइटी, हमें कभी पता नहीं चलता कि असल में हुआ क्या।
बिल्कुल, साइबर अटैक, वॉर, क्लाइमेट चेंज या कुछ और, ये अनिश्चितता ही कहानी का हिस्सा है। पाठक भी किरदारों की तरह अंधेरे में रहते हैं।
सिंबल्स का भी काफी इस्तेमाल है, घर सेफ्टी भी, जेल भी, हिरन नेचर में डिस्टर्बेंस,
और फ्रेंड्स शो, वो पुरानी निश्चितता की चाहत।
छोटी छोटी बेचैन करने वाली डिटेल्स जमा होती जाती हैं और तनाव बढ़ाती हैं।
उपन्यास का अंत भी उतना ही अनसर्टन है, कोई क्लियर रेजोल्यूशन नहीं है।
हाँ, फोकस रोज पर है, वो पास के खाली घर में जाती है जहाँ उसे खाने पीने का सामान, दवाइयाँ सब मिलता है, सर्वाइवल के लिए जरूरी चीज है,
पर वो उन सबको इग्नोर कर देती है।
हाँ, उसका ध्यान जाता है बेसमेंट के बंकर पर, जहाँ टीवी है और फ्रेंड्स की डीवीडी का पूरा सेट,
और कहानी खत्म होती है रोज के फ्रेंड्स का फाइनल एपिसोड देखने पर।
जी, दुनिया खत्म हो रही है और वो एक टीवी शो का अंत देख रही है।
ये एंडिंग मतलब क्या है इसका मतलब?
शायद ये दिखाता है कि जब रियलिटी बहुत भयानक हो जाती है तो हम कहानियों में एक तयशुदा अंत में सुकून ढूंढते हैं।
मतलब और नैरेटिव की हमारी जरूरत? ये सवाल खुला छोड़ दिया लेखक ने।
ये किताब पढ़ने के बाद एक अजीब सी बेचैनी रह जाती है।
बिल्कुल, ये हमारी सेफ्टी की फीलिंग पर, हमारे रिश्तों पर, हमारी बनाई दुनिया पर सवाल उठाती है।
सोचने पर मजबूर करती है कि अगर ऐसा हुआ तो हम क्या करेंगे,
हमारे अंदर के डर, हमारे पूर्वाग्रह कैसे सामने आएंगे।
इसका असर यही है शायद कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को, अपनी सहूलियतों को अलग नजर से देखने लगते हैं।
हाँ, और ये भी कि नस्ल और वर्ग की दीवारें कैसे संकट में और ज्यादा साफ दिखने लगती हैं।
तो ये कहानी हमें क्या सिखाती है? शायद यही कि हमारी सभ्यता की परतें कितनी पतली हैं।
और ये भी कि अनिश्चितता के बीच इंसान शायद हमेशा किसी कहानी, किसी मतलब की तलाश करता रहेगा जीने के लिए।
ये संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।